السلام علیکم، یہ پارٹ فور ہے ناول ڈیول مائنڈ. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کنول خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف ظہیر احمد. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ فور. پاکشیا سیکرٹ سروس کو تمہاری بھنک نہ مل جائے، اس لیے میں تمہاری طرف سے متفکر تھا، لیکن تم لوٹ آئے ہو، اس لیے میں خوش ہوں. اور تم کامیاب لوٹے ہو، اس سے میری خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. سابقہ کارناموں کی طرح تمہارا یہ کارنامہ بھی اسرائیل کی ترقی اور مفادات کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوگا، اور تمہارا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. تم واقعی جینیس ہو، بے حد جینیس. مارشل سیکلینے نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تھینک یو چیف، آپ کی طرف ہی تعریف ہی میرے لیے سند ہے. اگین تھینکس، کارگلے نے بڑے مودانہ لہجے میں کہا. میں نے پاکشیا اوسلو کساوا اور کلر سینڈے کو اس لیے بھیجا تھا کہ پاکشیا سیکرٹ سروس ان کی طرف متوجہ رہے اور تم وہاں اطمینان سے اپنا کام کرتے رہو. اور ایسا ہی ہوا ہے، کلر سینڈیٹ ختم ہو گیا ہے اور کرائم ماسٹر بھی ہلاک ہو گیا ہے، لیکن انہیں وہاں بھیجنے کا میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے، جس سے تمہیں کامیابی ملی ہے، مارشل سیکلینے نے کہا. یس چیف، کارک فلے نے کہا. ٹھیک ہے، اب اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو. میں اس کام کو جلد سے جلد آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر جو پیشی رفت ہوگی میں تمہیں آگاہ کر دوں گا، مارشل سیکلینے نے کہا. اوکے چیف، میں بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا، کارک فلے نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے مارشل سیکلینے کو فوجی انداز میں سلیوٹ کیا اور پھر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا. اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تھی. اس نے چیف کو بتایا تھا کہ پاکشیا سیکرٹ سروس کو اس کی کوئی بھنک نہیں ملی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس نے چیف کو محض تسلی دی تھی، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی. اور وہ پاکشیا میں ایک ایسا کام کر کے آیا تھا کہ جلد یا بدیر پاکشیائی ایجنٹ اسرائیل میں وارد ہو سکتے تھے، اور وہ یہاں کس مقصد کے لیے آ سکتے تھے اس کا کارک فلے کو بخوبی اندازہ تھا. عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. مجھے ایکس ہینڈر ٹرانسمیٹر لا دو، مگر ذرا جلدی، سلام و دعا کے بعد عمران نے کہا. تو بلیک زیرو سر ہلا کر اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا. اس نے ٹرانسمیٹر عمران کو دیا اور واپس جا کر اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھ گیا. عمران کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی اور وہ خاصا الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا. اس کے چہرے پر ٹھوس سنجیدگی دیکھ کر بلیک زیرو کو اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. وہ جانتا تھا کہ جب عمران الجھا ہوا ہوتا تھا تو وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا، اور اب عمران نے آتے ہی اس سے ایکس ہینڈر ٹرانسمیٹر منگوا لیا تھا، جو لانگ رینج اور شارٹ رینج ٹرانسمیٹر کے طور پر کام کرتا تھا، جسے عمران اپنی مرضی سے شارٹ اور لانگ رینج میں تبدیل کر سکتا تھا. اور یہ ٹرانسمیٹر دوسرے تمام ٹرانسمیٹر سے زیادہ سیکیور تھا. نہ اس ٹرانسمیٹر کی کہیں کال سنی جا سکتی تھی اور نہ ہی اسے ٹریس کیا جا سکتا تھا. اس ٹرانسمیٹر پر عمران عموماً ٹائگر سے بات کرتا تھا. عمران نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور اس پر ایک فریکوئنسی ایڈجسٹ کرنا شروع ہو گیا. فریکوئنسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ایک بٹن پریس کیا تو اچانک ٹرانسمیٹر کا ایک سبز رنگ کا بلب جلنا بجھنا شروع ہو گیا. ہیلو پرنس آف ڈیم کالنگ، ہیلو ہیلو اوور، عمران نے ایک بٹن پریس کر کے دوسری طرف کال دیتے ہوئے کہا. اسی لمحے ٹرانسمیٹر پر ہلکی سی بیپ سنائی دی اور ساتھ ہی جلتا بجھتا سبز بلب ٹھہر گیا. یس ٹائیگر اٹینڈنگ یو اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر کی مخصوص آواز سنائی دی. टाइगर तुम इस वक्त कहाँ हो? ओवर, इमरान ने पूछा। मैं अपने फ्लैट में हूँ बॉस, हुकुम। ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तुम इसी वक्त सिविल अस्पताल रवाना हो जाओ, कल न्यू टाउन की एक कोठी जिसका नाम 27 है और वो कोठी डी ब्लॉक में है। इस कोठी में 4 अफराद की सरबरेदा लाशें मौजूद थी। वो लाशें मुतालिका इलाके की पुलिस के तौसत से सिविल अस्पताल के कोल्ड रूम में रखवाई गई होगी। तुम इन लाशों को जाकर चेक करो और ये मालूम करो कि इन पर कौन सा मेकअप किया गया है और वो 4 अफराद असल में कौन हैं और इनका किस ग्रुप से ताल्लुक है। मुझे इन 4 अफराद की असली शक्लें और इनके मुकम्मल कवायद चाहिए और वो भी 2 घंटों में। ओवर, इमरान ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, मैं अभी रवाना हो जाता हूँ। ओवर, दूसरी तरफ से टाइगर ने बगैर कोई सवाल करते हुए कहा। ये ध्यान रखना कि इन लाशों पर स्पेशल मेकअप किए गए हैं जो ना ब्लू क्रॉस विजन ग्लासेस से नजर आते हैं और ना ही डबल ग्लासेस डिजिटल कैमरे से। डबल ग्लासेस डिजिटल कैमरे से इनकी रियल तस्वीर बनती है, लेकिन ये यकीनी बात है कि इन लाशों के चेहरों पर मेकअप मैच किया गया है। इसलिए तुम अपना मखसूस सामान जरूर साथ ले जाना ताकि इनके मेकअप वॉश कर सको और फिर मेकअप के नकाब के पीछे से जो इनके असली चेहरे सामने आए इनके बारे में मालूमात हासिल कर सको कि वो कौन थे और इनका ताल्लुक किस से था। ओवर, इमरान ने तहकमाना लहजे में कहा। यस बॉस, मैं ये सब कर लूंगा। ओवर, टाइगर ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। एक बात और, इस काम से फारिग होकर तुमने एक काम और करना है। ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, बताएं। ओवर, टाइगर ने कहा और इमरान इसे बताने लगा कैसे क्या करना है। ठीक है बॉस, मैं ये काम भी कर लूंगा। आप बताएं आप कहाँ हैं और मैं आपको कहाँ रिपोर्ट दूं। ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है, 2 घंटों के बाद मैं तुम्हें खुद ही कॉल कर लूंगा। ओवर, इमरान ने कहा। ओके बॉस। ओवर, दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर इससे रास्ता खत्म कर दिया। ये सब क्या चक्कर है इमरान साहब? टाइगर को आप किन की लाशों के मेकअप साफ करने के लिए भेज रहे हैं और क्यों? ब्लैक जीरो ने इमरान को ट्रांसमिटर और पत्ते देखकर हैरत भरे लहजे में पूछा। तो इमरान ने इसे तनवीर की बताई हुई सारी बातें बता दी और इसे रेड ली के बारे में भी बता दिया कि इसने डेविल माइंड एजेंट के बारे में इसे क्या बताया था, जिसे सुनकर ब्लैक जीरो भी हैरान रह गया। ओ, इसराइली डेविल माइंड एजेंट कार्क फिल्ले यहाँ पाकिस्तान में मौजूद था और इसका यहाँ मौजूद होने का हमें पता ही नहीं चला, ब्लैक जीरो ने परेशान होते हुए कहा। हाँ, वो सिर्फ यहाँ मौजूद नहीं था बल्कि वो यहाँ से अपना मिशन पुर इसरार अंदाज में मुकम्मल करके वापस भी चला गया है और हम अभी तक मुकम्मल अंधेरे में हैं कि वो यहाँ कब आया था और इसका मिशन क्या था। अब आप मिशन की कामयाबी का वो इसराइल पहुंचकर बाकायदा जश्न मना रहा है, इमरान ने परेशानी से भरपूर लहजे में कहा। लेकिन इसका ऐसा कौन सा मिशन हो सकता है जिससे पाकिस्तान की सलामती और मफाद को इस हद तक शदीद नुकसान पहुंच सकता है कि पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे और पूरी दुनिया में बदनाम हो जाए, ब्लैक जीरो ने कहा। यही तो समझ में नहीं आ रहा, तुम आला हकाम से बात करो और ये मालूम करने की कोशिश करो कि इन दिनों पाकिस्तान में क्या हो रहा है और आने वाले आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान में इन दिनों किन साइंसी प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है या पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की वफूद तो नहीं आने वाले। जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की और बेहद अहम हस्तियाँ आने वाली हों और ब्लैक हार्ट इन्हें नुकसान पहुँचाने के चक्करों में हो। अगर ऐसा हुआ तो इससे वाकई पाकिस्तान की साख को बेहद नुकसान पहुंच सकता है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर हर तरफ से उंगलियां उठाई जा सकती हैं। ये इशू वाकई पाकिस्तान की रुसवाई का बायस बन सकता है और नुकसान का भी, क्योंकि ब्लैक हार्ट एजेंसी के मिशन अमूमन ऐसे ही होते हैं। ये एजेंसी पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैलाने और कत्लोगारत करने में अपना सानी नहीं रखती। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों को सबोताज करना, अहम शख्सियात को हलाक करना और साइंसदानों को अगवा करना इनके अहम मिशंस होते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि कार्क फिल्ले ने खुफिया तौर पर ऐसा ही कोई काम किया है, या फिर ऐसे ही किसी काम को सरंजाम देने के लिए इसने कोई ग्राउंड बनाया है, ताकि इसके जाने के बाद इसके साथी इसका कोई अधूरा काम पूरा कर सकें। वो यहाँ ऐसा ही कोई काम करेंगे, या तो वो यहाँ होने वाली किसी बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर यहाँ आने वाले दूसरे मुल्क के किसी रहनुमा को हलाक करना भी इनका टास्क हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने का इनके पास दूसरा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इमरान ने सोचते हुए अंदाज में मुसलसल बोलते हुए कहा। ये काम तो काक फिल्ले खुद भी कर सकता था, फिर से वापस जाने की क्या जरूरत थी। और ये भी तो हो सकता है कि इनका मिशन एक बार फिर आपको और पाकिस्तान सेक्रेट सर्विस को खत्म करने का हो और वो यहाँ अपने सबके मिशन पर ही काम करने के लिए आए हों, जो इनका भेजा हुआ कलर सैंडेक्ट नहीं कर सका था। मेरा मतलब है वो फिर से पाकिस्तान में खौफनाक धमाके करके तबाही और बर्बादी फैलाना चाहते हों, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन इससे पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी ही फैलाई जा सकती है। ये सब कुछ यहाँ पहले ही हो रहा है, इससे पाकिस्तान की इतनी साख मुतासिर नहीं होती, क्योंकि बैन अल-अक़वामी तौर पर इन मामलात को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात कहकर टाल दिया जाता है। ब्लैक हार्ट एजेंसी के बारे में रेड ली ने मुझे जो कुछ बताया है, इससे तो ऐसा लगता है कि इस बार ब्लैक हार्ट एजेंसी ऊंचे पैमाने पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का सोच रही है और वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी साजिश कर रही है जिससे पाकिस्तान का इमेज मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस कदर बदनाम हो जाए कि इसके हलीफ ममालिक भी इसका साथ छोड़ दें, बल्कि मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान से नफरत करना शुरू कर दें। और इन सब के पीछे ब्लैक हार्ट एजेंसी का डेविल माइंड एजेंट कार्क फिल्ले काम कर रहा है, जो वाकई शैतानों का शैतान है। और अब तो मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि क्राइम मास्टर और कलर सैंडेक्ट को पाकिस्तान में इसलिए भेजा गया था कि हम इनकी तरफ मुतवज्जा रहें और कार्क फिल्ले यहाँ इत्मीनान से अपना काम करता रहे, इमरान ने कहा। हाँ, ये सब मुमकिन है, और अगर इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ फिर कोई नई साजिश कर रहा है तो ये वाकई इसराइल की पाकिस्तान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खौफनाक और इंतहाई भयानक साजिश होगी, ब्लैक जीरो ने परेशान होते हुए कहा। हाँ, इसलिए हमें भी हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा, ताकि हम हर सूरत में इसराइल को इसके मजमूम और नापाक इरादों से बाज रख सकें, इमरान ने कहा। इसके लिए सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि कार्क फिल्ले यहाँ करने क्या आया था और इसका मिशन क्या था। अगर इसने पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई ग्राउंड बनाया है तो वो ग्राउंड क्या हो सकता है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है, इमरान ने असबात में सर हिलाकर कहा। मैं सर सुल्तान से बात करता हूँ। पाकिस्तान में इंटरनेशनल डेलीगेशन की आमद के शेड्यूल और इनकी आमद के बारे में इनके पास ज्यादा मालूमात होती है, और आला सतही तौर पर अगर कहें किसी महकमे में कोई गड़बड़ हुई है तो इसके बारे में भी सर सुल्तान को कुछ न कुछ जरूर मालूम होगा, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ब्लैक जीरो ने टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और रिसीवर उठाकर सर सुल्तान के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इसी लम्हे इमरान के सेल फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने चौंक कर जेब से सेल फोन निकाल लिया, डिस्प्ले पर स्पेशल नंबर फ्लैश हो रहा था। यस इमरान स्पीकिंग, इमरान ने कॉल रिसीविंग बटन ऑन करके सेल फोन कान से लगाते हुए कहा। तनवीर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से तनवीर की मखसूस आवाज सुनाई दी। हाँ बोलो, कुछ मालूम हुआ, इमरान ने पूछा। हाँ मैंने एयरपोर्ट के इमिग्रेशन से मालूमात हासिल की है, इनके पास कल रात पाकिस्तान से जाने वाली तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स का शेड्यूल और डेटा मौजूद है। तकरीबन 8 फ्लाइट्स मुख्तलिफ ममालिक गई थी, जिनमें 2 क्रीमिया के लिए थे, 2 फ्रांस के लिए और 1 यूएई के लिए। इसी तरह 1 फ्लाइट पेरिस के लिए रवाना हुई थी और 2 फ्लाइट ओगान और मिस्र के लिए थी। मैंने इन तमाम फ्लाइट्स के मुसाफरों को लिस्टें हासिल कर ली हैं और फिर मैं एयरपोर्ट के सिक्योरिटी सेंटर में भी गया था। इन फ्लाइट्स में जितने मुसाफिर रवाना हुए हैं वहाँ इन तमाम अफराद के कागजात की कापियाँ और इनकी सीसी फुटेज मौजूद है। मैंने इन फुटेज को चेक किया है। मुझे जिस मतलूबा शख्स की तलाश थी वो ओगान के फ्लाइट में सवार हुआ था। इसका चेहरा तो दूसरा था लेकिन इसके कद काट और इसके चाल ढाल से मुझे पूरा यकीन है कि वो काक पिल्ले ही था। दूसरी तरफ से तनवीर ने तफसील बताते हुए कहा। क्या तुमने इसके कागजात और दूसरी मालूमात हासिल की है, इमरान ने पूछा। हाँ वो एक मिस्री मुसाफिर बनकर ओगान गया था, कागजात में इसका नाम मुस्लिम असफहानी है, तनवीर ने जवाब दिया। ओके, वो जिस फ्लाइट में गया था मुझे इसकी तफसील बताओ, फ्लाइट नंबर, इसकी रवानगी का वक्त और ये कि वो तैयारी की किस क्लास में गया था, इसका सीट नंबर और इसकी तस्वीर फौरी तौर पर मुझे एमएमएस कर दो, वो तस्वीर जिसमें वो मुस्लिम असफहानी बना हुआ है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से तनवीर ने इसे तफसील बता दी। ठीक है, मैं अभी मालूम करता हूँ कि काफिले मुस्लिम असफहानी बनकर ओगान में कहाँ गया है। तुम फ्लैट में जाकर तैयारी करो, मेरे चीफ को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है, हो सकता है कि हमें ओगान या फिर इसराइल का जल्द सफर करना पड़े, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओके, क्या मैं जूलिया और बाकी मेम्बरान को आगाह कर दूं, तनवीर ने पूछा। नहीं, ये काम चीफ का है, वो ये सब अपनी सवाब जीत पर ही करेगा, हमें इसके काम अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओके, तब मैं अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेता हूँ, तनवीर ने कहा और इमरान ने ओके कहकर इससे रابطہ खत्म कर दिया। ब्लैक जीरो फोन पर सर सुल्तान से बात कर रहा था। इमरान ने इसे मसूफ देखकर सेल फोन के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस मुस्लिम होटल, रابطہ मिलते ही दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, मेरी थर्ड फ्लोर पर रूम नंबर 81 के मिस्टर ग्रास से बात कराएं। इनका पूरा नाम देवेंद्र ग्रास है, इमरान ने कहा। ओ आप एक मिनट होल्ड करें सर, मैं अभी बात कराती हूँ, दूसरी तरफ से पाकिस्तान का सुनकर ऑपरेटर ने जल्दी से कहा और सेल फोन में मुतरन्नम म्यूजिक सुनाई देने लगा। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने फोन होल्ड ऑन कर दिया था। यस ग्रास स्पीकिंग, चंद लम्हों के बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान से तुम्हारा पार्टनर हार्वर्ड बोल रहा हूँ, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। ओ हार्वर्ड साहब, आप, सॉरी हार्वर्ड साहब, मैं अभी बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, मेरी सिंधी सेक्स के साथ मीटिंग चल रही है, आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करें प्लीज, दूसरी तरफ से ग्रास ने जवाब देते हुए कहा और इससे पहले कि इमरान कुछ कहता दूसरी तरफ से रابطہ खत्म कर दिया गया। इमरान ने सेल फोन ऑफ किया और इसने एक बार फिर एक्स हैंडल ट्रांसमीटर उठा लिया। इमरान ने ट्रांसमीटर के पीछे लगे हुए चंद बटन प्रेस करके इसे लॉन्ग रेंज में तब्दील किया और फिर इसने ट्रांसमीटर ऑन किया। और इस पर एक और फ्राइक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू हो गया और फिर इसने जैसे ही ट्रांसमीटर का सब बल्ब जलते बुझते देखा तो इसने एक बटन प्रेस करते हुए दूसरी तरफ कॉल देनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ से ग्राज ने खास तौर पर डी सिक्स का कहा था, जिसका मतलब था कि इमरान इससे डी सिक्स ट्रांसमीटर पर बात कर सकता है और इमरान के पास मौजूद एक्स हैंडर ट्रांसमीटर लॉन्ग रेंज डी सिक्स ट्रांसमीटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलो हेलो प्रिंस ऑफ डैम कॉलिंग, हेलो हेलो ओवर, इमरान ने ट्रांसमीटर पर दूसरी तरफ मकसूद अंदाज में कॉल देते हुए कहा। इसी लम्बे ट्रांसमीटर से बीप की आवाज सुनाई दी और स्पार्क करता बल्ब एक जगह रुक गया। यस डबल जीरो अटेंडिंग यू ओवर, दूसरी तरफ से इसी गराज की आवाज सुनाई दी जिससे इमरान ने अभी चंद लम्बे पहले फोन पर बात की थी। डबल जीरो इसराइल के हमसाया मलिक ओगान में पाकिस्तान के फोन एजेंट के तौर पर काम कर रहा था जो एक इसराइली यहूदी बना हुआ था और इसने रूम में इसराइल की एक निजी कंपनी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस संभाल रखा था, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान सेक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट डबल जीरो के तौर पर काम करता था और एक्सटो के साथ साथ वो इमरान को प्रिंस ऑफ डैम के तौर पर जानता था। डबल जीरो, मैं तुम्हें स्पेशल MMS पर एक आदमी की तस्वीर भेज रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर तक तुम्हें मिल जाएगी। ये आदमी कल रात फ्लाइट नंबर 707 से ओगान पहुँचा है। इसने जनरल क्लास की सीट नंबर 303 पर सफर किया है और इसका नाम मुस्लिम अस्फहानी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो ओगान में कहाँ है और अगर वो ओगान में नहीं है तो कहाँ गया है। तुम अपने सोर्सेस से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये तमाम मालूमात आसानी से हासिल कर सकते हो, इसलिए मुझे इस शख्स के बारे में हतमी और मुफस्सिल मालूमात चाहिए। ओवर, इमरान ने तेज तेज बोलते हुए कहा। ठीक है, मैं मालूमात हासिल कर लूँगा, ओवर, दूसरी तरफ से डबल जीरो ने कहा। जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि मुस्लिम अस्फहानी ने सिर्फ ओगान तक का ही सफर किया है और वहाँ से फौरन ही इसराइल रवाना हो गया है। तुम्हें ये भी मालूम करना है कि जब वो ओगान आया था और इसराइल रवाना हुआ था तो इसके पास क्या कुछ था, मतलब ये कि क्या इसके पास कोई हैंडबैग था, ब्रीफकेस या फिर सूटकेस था। अगर मुझे इन चीजों की तफसीलात भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, ओवर, इमरान ने कहा। ओ, इसके लिए तो मुझे एयरपोर्ट के स्पेशल सिक्योरिटी सर्चिंग सेक्शन तक जाना पड़ेगा। स्पेशल सिक्योरिटी सर्चिंग सेक्शन की मदद के बगैर मैं ये सारी मालूमात हासिल नहीं कर सकूंगा, क्योंकि यहाँ ऐसी तमाम मालूमात एयरपोर्ट के स्पेशल सिक्योरिटी सर्चिंग सेक्शन के ऑफिस से ही मिल सकती है। वो मुझे तमाम मुसाफिरों के पास मौजूद एक एक चीज के बारे में तफसील बता सकते हैं। एयरपोर्ट की मेन सिक्योरिटी भी इसी सेक्शन के अंडर काम करती है और तमाम मुसाफिरों की जिस्मानी और लैगेज चेकिंग की जिम्मेदारी भी इसी सेक्शन की है, ओवर, दूसरी तरफ से डबल जीरो ने जवाब दिया। जो भी हो, मुझे रिपोर्ट चाहिए हर सूरत में और हर हाल में, ओवर, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओके, मैं कोशिश करता हूँ, ओवर, दूसरी तरफ से डबल जीरो ने जवाब दिया। कोशिश नहीं, तुम्हें ये काम हर हाल में करना है। मैं तुम्हें 3 घंटों तक कॉल करूँगा, इन 3 घंटों तक काम मुकम्मल हो जाना चाहिए, ओवर, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यस प्रिंस, हो जाएगा, ओवर, डबल जीरो ने इस अंदाज में कहा जैसे ये काम इसके लिए मुश्किल जरूर हो मगर नामुमकिन नहीं, इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर रब्ते मुनकता कर दिया। ब्लैक जीरो इस वक्त तक सर सुल्तान से बात कर चुका था, इसके चेहरे पर कदरे परेशानी के तासर दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ, कुछ बताया है सर सुल्तान ने, इमरान ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। मैंने सर सुल्तान को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है, काक पिल्ले का सुनकर वो भी मुतफक्कर हो गए हैं उन्होंने मुझे बताया है कि पाकिस्तान चूंकि इन दिनों अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बुरे हालात का शिकार है, इसलिए फिलहाल कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया जा रहा है। आमतौर पर बैरूनी मुल्क के डेलीगेशन तो यहाँ आते ही रहते हैं, जो पाकिस्तान के स्पेयर कैचरिंग प्लान की चेकिंग या आम बिजनेस टूर करते हैं, या फिर इन दिनों फील्ड का शिकार बने लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं। लेकिन सरकारी तौर पर इनमें ऐसा कोई बड़ा डेलीगेशन शामिल नहीं है जिन्हें अगर ब्लैक हार्ट एजेंसी टारगेट करे तो इससे पाकिस्तान की इज्जत मजरूह होने का एहतमाल होता हो और ना ही इनकी आइंदा आने का कोई प्लान और डेट फिक्स है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई ऐसा फार्मूला भी जेर तकमील नहीं है जिसमें इसराइल या दूसरे ममालिक दिलचस्पी रखते हों, ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। कुछ ना कुछ तो है प्यारे, वरना काफिले जैसा डेविल माइंड एजेंट पाकिस्तान में आए और कुछ ना करे, ये तो हो नहीं सकता। रेड ली ने मुझे कंफर्म रिपोर्ट दी है कि काफिले अपने मिशन की कामयाबी का जश्न मना रहा है और काफिले के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ वो छोटे मोटे मिशन की कामयाबी पर इतना खुश नहीं होता कि बाकायदा इस पर जश्न मनाए, इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कहा। तो फिर आप बताएं, आपके ख्याल में वो यहाँ ऐसा क्या कर सकता था जिससे खुश होकर वो इसराइल में जाकर जश्न मना सकता था, ब्लैक जीरो ने पूछा। मेरे ख्याल अगर इतने ही अच्छे होते तो फिर रोना किस बात का था। मैं तो ख्यालों ही ख्यालों में जूलिया से न जाने कितनी बार शादी कर चुका हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे घर ले जाने के लिए कहा इसकी डोली उठाते हैं, इसी वक्त मेरा रकीब रो सफेद मेरे सर पर पहुँच जाता है। ख्यालात मेरे होते हैं लेकिन हर बार अपने ख्यालात से वो मुझ पर सबकत ले जाता है और गिने बगैर मुझ पर लगातार फायरिंग करना शुरू कर देता है और मैं बस अपना सहरा ही संभालता रह जाता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आते देखकर ब्लैक जीरो के चेहरे पर सुकून छा गया, क्योंकि इमरान जब भी संजीदा होता था तो वो भी इससे खौफजदा रहता था, क्योंकि इमरान की संजीदगी कभी भी इसके गुस्से का सबब बन सकती थी और इसका गुस्से का शिकार ब्लैक जीरो भी बन सकता था और वो इमरान के गुस्से से बहुत डरता था, इसलिए इमरान को संजीदा देखकर वो भी संजीदा हो जाता था और सोच समझकर और संभल कर इससे बात करता था ताकि इसके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिस पर इमरान इस पर गुस्सा कर सके। शुक्र है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, वरना मुझे आज आपको देखकर ऐसा लग रहा था जिसे आप जिंदगी में कभी मुस्कुराए ही ना हो, ब्लैक जीरो ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान भी मुस्कुरा दिया। इसी तरह इनकी बातें चलती रहीं। फिर दो घंटों के बाद इमरान ने दोबारा टाइगर से ट्रांसमीटर पर राब्ता करना शुरू कर दिया। यस टाइगर अटेंडिंग यू ओवर, राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है ओवर, इमरान ने एक बार फिर संजीदा होते हुए पूछा। आपने बिल्कुल ठीक कहा था बॉस, वो चारों वाकई मेकअप में थे। इन पर ड्रॉम व्हाइट प्लास्टिक मेकअप किया गया था जो ना तो किसी कैमरे की आंख से देखा जा सकता था और न ब्लू क्रॉस ग्लासेस से, बल्कि इस मेकअप को किसी भी एको पेमेंट के वॉश भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन मैंने इस मेकअप को भी साफ कर लिया है। इस मखसूस मेकअप को गर्म पानी से आसानी से साफ किया जा सकता है, ओवर, दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब दिया। मैंने तुमसे रिपोर्ट मांगी है, ये नहीं पूछा कि वो मेकअप कैसा था और इसे चेक कैसे किया जा सकता था और वॉश कैसे किया जा सकता था, ओवर, इमरान ने मुंह बनाकर सर लहजे में कहा। ये नॉवेल डेविल माइंड का बकिया हिस्सा पार्ट 5 में समाप्त फरमाएं।